मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 19 मार्च 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने नक्सलवाद विषय को चुना है। मैंने देखा है कि इस बीच में बहुत से मुझे ऐसे मेल मिले जिसमें स्टूडेंट्स ने ये चाहा कि खासकर जो नक्सली आंदोलन है इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा बताया जाए। और साथ ही साथ मैंने यह भी महसूस किया कि अभी अगर हम सिक्योरिटी को ले लें, भारत की आंतरिक सुरक्षा वाले बिंदु को लें, जो आपके सिलेबस में है भी और जिस तरह से समस्या बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बात है कि सरकार इस पर जिस तरीके से नियंत्रण करने की अब हर संभव कोशिश कर रही है, उसको देखते हुए इसे आप एक अपने एग्जामिनेशन का, मेंस का स्पेशली, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मान सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक बनता है। आप जानते हैं कि सिक्योरिटी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक एक्सटर्नल हो जाता है जिसमें विदेशी आक्रमण है जिसका दायित्व तो सेना के ऊपर होता है, और एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के उग्रवाद और नक्सलवाद, यूं कह लीजिए कि इसमें सांप्रदायिक दंगे वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। इसकी जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली होम मिनिस्ट्री पर होती है, पुलिस पर होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उन पर होती है। और आपने देखा होगा अनसॉल्व्ड पेपर में कि लगभग हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस सिक्योरिटी पर होते हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक डेली ऑडियो लेक्चर इस विषय पर इंडिपेंडेंटली करना चाहिए ताकि आपको नक्सलवाद के बारे में एक बेसिक और लगभग चौतरफा जानकारी हो जाए। तो मित्रों, आइए अब थोड़ा सा नक्सलवाद पर बात करते हैं। देखिए, इसमें जो नक्सल शब्द है, बेसिकली ये मैंने स्टूडेंट से देखा है, उसे नस्ल से जोड़ लेते हैं गलती से, नस्ल से, यानी कि यह एक जाति का दूसरी जाति के प्रति हिंसा की घटनाएं हैं। हालांकि नस्ल का मतलब जाति से नहीं होता, नस्ल का मतलब तो एक प्रकार से रंग से होता है, जो आर्य और अनार्य और ये सब नस्ल कहलाती हैं। लेकिन खैर, यहां ये शब्द है नक्सल। नक्सलवाड़ी बेसिकली एक जगह है, ये दार्जिलिंग जिले का एक गांव है, छोटा सा गांव है, और जहां बैठकर चारू मजुमदार, कानू सान्याल, ये दो इसके नक्सलवादी आंदोलन के लीडर्स हैं जिनसे शुरुआत हुई है। ये शुरुआत 1967 में हुई थी। जिस जगह पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी वो नक्सलवाड़ी गांव है, और एक पर्टिकुलर जगह आज वहां शेड बना हुआ है, वो हम लोगों ने देखा है, वहां से ये आंदोलन निकला था। बेसिकली मित्रों, ये आंदोलन निकला कैसा था? उस समय तो ये आंदोलन ही था, अब ये हिंसात्मक किसने रूप ले लिया है, तो आंदोलन शब्द तो खत्म ही हो गया है। देखिए, आंदोलन का मतलब होता है कि आप एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के और सही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो आरंभ में इनका उद्देश्य तो सही था, खासकर जो मार्क्सवादी विचारों से निकला हुआ था, लेकिन जो इन्होंने तरीके अपनाए वो तरीके सही नहीं थे। और खासकर देखिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो सही नहीं थे, जहां आप यू कह लिए डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां तो थोड़ी बहुत इसकी अहमियत हो सकती है, यानी यू कह लीजिए कि जरूरत हो सकती है, थोड़े से लोग आपके प्रति सहानुभूति भी रख सकते हैं क्योंकि वो खुद भी एक तानाशाही शासन में रह रहे हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खासकर नक्सलवादी जिस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनके साथ जनता अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर पाती। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि इनका उद्देश्य क्या है और इनका तरीका क्या है। ये जो इनका सिद्धांत है, ये बेसिकली शोषण के विरुद्ध खड़ा किया जाने वाला एक आंदोलन है, या कह दीजिए आंदोलन शब्द इनके लिए ठीक नहीं होता है, ये आंदोलन शब्द का खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, ये बेसिकली क्रांति कहते हैं, क्रांति, सर्वहारा क्रांति, यानी कि समाज का जो निचला वर्ग है जिनका लगातार शोषण हो रहा है, हर कोई शोषण कर रहा है, राज्य भी शोषण कर रही है, पूंजीपति भी शोषण कर रहे हैं, व्यापारी भी शोषण कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वे भी शोषण कर रहे हैं, उनके मालिक शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण के खिलाफ किया जाने वाला एक आंदोलन है, की जाने वाली एक क्रांति है, और जो लोग शोषित हो रहे हैं इनके मुक्ति का आंदोलन है कि इनको शोषण से मुक्त कराना है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आप जानते हैं मित्रों, कि किस तरह से कार्ल मार्क्स ने शोषक और शोषित की थ्योरी दी थी, और फिर समाज का विश्लेषण करते हुए यह बताया था कि जिस दिन सत्ता पर इन शोषित वर्ग का अधिकार हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि समाज से शोषण खत्म हो जाएगा और समाज में एक समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। आप ये भी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के इस राजनीतिक सिद्धांत को लेनिन ने रूस में और माउथ से तुंग ने चाइना में राजनीतिक रूप में परिवर्तित करके दिखाया, यानी यूं कह लीजिए कि कार्य रूप में परिवर्तित करके दिखाया। दोनों जगह क्रांतियां हुई और दोनों जगह क्रांतियों के बाद इस वर्ग का शासन भी स्थापित हुआ। चाइना के बारे में आपको लगातार आप पढ़ ही रहे हैं कि हालांकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी सत्ता में है, लेकिन जो कम्युनिस्ट का जो थ्योरी थी या कह लीजिए जो स्ट्रक्चर था, जो संरचना थी कि किस तरीके से काम होना चाहिए, राज की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, वो अब लगभग लगभग धीरे धीरे टूट रही है। आपने देखा कि वहां भी अब ओपन आर्थिक व्यवस्था को खोल दिया गया है, विदेशी पूंजी आ रही है, लोगों को अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो बेसिकली निजी पूंजी के खिलाफ थी, तो अब चाइना भी उसे धीरे धीरे तरजीह दे रहा है। तो चाइना ओपन अप कर रहा है, और रशिया का आपको मालूम ही है कि वहां का तो कम्युनिस्ट, वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो 1991 में बिल्कुल खत्म ही हो गई, रूस ही बिखर गया, 15-16 देशों में टूट गया। यानी कि इसके जरिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह कि यह एक ऐसी व्यवस्था बनी जो जिसकी उम्र अगर हम रशिया को लें तो हार्डली 90-92 साल रही, 92-93 साल में, 94 साल में यह व्यवस्था खत्म हो गई। मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी पर आधारित कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इतनी जल्दी बिखर जाए तो यह उसकी अकाल मृत्यु जैसी ही है। तो मित्रों, यही कोशिश नक्सलवादी कर रहे हैं कि भारत में जो राज्य हैं उन पर हमारा अधिकार हो जाए, हमारा यानी कि गरीब किसान मजदूर शोषित शोषित तबका है इनका अधिकार हो जाए। याद रखिएगा, ये अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, मैं यहां जो राज्य कह रहा हूं उसके आप राष्ट्र से जोड़ करके देखें, ये अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं कि हम भारत से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नॉट एट ऑल। वो भारत संघ में ही रहना चाह रहे हैं, भारत संघ में रहना चाह रहे हैं, बस करना केवल ये चाह रहे कि सत्ता पर हमारा अधिकार हो जाए। अब सत्ता पर अधिकार हो जाए इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि आप चुनाव लड़िए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए, राजनीतिक पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़िए और सत्ता में आ जाइए। भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, और इसी तरह की जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसी रास्ते को लेकर के चल रही हैं, और इस माध्यम से उन्होंने कुछ राज्यों में अपनी सत्ता हासिल भी की। आप केरल में देखिए अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में अभी चुनाव से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और 25 साल तक रही। आप वेस्ट बंगाल को देखिए, वेस्ट बंगाल में तो इन्होंने 34 साल तक शासन किया, एक बहुत लंबा शासन इनकाल इनका रहा। तो इस तरीके से इन्होंने सत्ता प्राप्त की, तो एक तो ये तरीका है। लेकिन जो नक्सलवादी हैं वो इस तरीके को नहीं अपनाते, नहीं मानते, वो सीधे सीधे हिंसा के रास्ते को अपनाते हैं। उनकी मान्यता ही यही है कि जो सत्ता है वह बेसिकली बंदूक की नली से निकलती है, जो माउथ से तुंग ने कहा है। तो ये माउथ से तुंग और लेनिन की जो बहुत ही उग्रवादी विचारधारा है उसको लेकर के चलते हैं, खासकर यूं कह लीजिए कि माउथ से तुंग, कि ये सत्ता इस रूप में नहीं सौंपेंगे, इनसे सत्ता आसानी से हासिल नहीं की जा सकती बिना हिंसा। तो दोस्तों, हिंसा एक प्रकार से इनका दर्शन बन जाता है, और चूंकि देखिए सब संख्या में कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर ये करते क्या, हिंसा के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? एक गुरिल्ला युद्ध को लेकर के चलते हैं। गुरिल्ला युद्ध आप जानते हैं कि छुटपुट छुटपुट पता नहीं कहां से कहां प्रकट हो जाए और वहां हिंसा करके फिर गायब हो जाए। तो अगर आपको गुरिल्ला युद्ध करना है, अब आप कनेक्ट करते चले जाइए कि अगर आपको गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेना है, और देखिए अगर आप संख्या में कम हैं और राजसत्ता के खिलाफ आपने हथियार उठाए हैं तो आपको गुरिल्ला युद्ध ही करना पड़ेगा। हमारे यहां देखिए शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के बड़े सिद्धस्त वो माने जाते हैं, सेनापति माने जाते हैं। तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं और इनको छिपने के लिए फिर जगह चाहिए, तो कहां जगह मिलेगी? तो जगह दो तीन इनके लिए मुफीद होते हैं, या तो वो जंगलों में रहें जहां की सेना और पुलिस को पहुंचने में दिक्कत हो, या फिर पहाड़ों में रहें वहां दिक्कत होगी, या कंदराओं में रहें जैसे इधर चंबल घाटी वगैरह में आप देखिए तो वहां खाइयां और दर्रे और इस तरह से बने हुए हैं, तो इनको छिपने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल जाती है और जो पुलिस है सेना है उनके लिए बड़ी दिक्कत होती। तो ये इनके आदर्शतम स्थल होते हैं, राइट। तो मित्रों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी तरफ से आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो नक्सलवादी हैं ये अपने लिए किन क्षेत्रों को चुनेंगे। देखिए बहुत स्पष्ट है कि ये वन क्षेत्र को चुनेंगे, ये पहाड़ी क्षेत्रों को चुनेंगे। दर्रे और खाइयों को ये इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि दर्रे और खाइयों में पॉपुलेशन नहीं है, आबादी नहीं है, तो अगर उस पर वो शासन कर भी लेंगे तो इन राज्य किस पर करेंगे, वहां तो लोग ही नहीं है। और इनको लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लोगों का इसलिए चाहिए कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिस आदर्श को लेकर के कि हमको समाज को शोषण से मुक्त कराना है, ये इनका आदर्श है। तो सवाल ये है कि शोषण हो किसका रहा है? आप जिनका शोषण हो रहा होगा आप मुक्त तो उन्हें ही कराएंगे ना, तो शोषण आदमियों का हो रहा है और वो आदमी भी जो हैं वो निम्न वर्ग के हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये लोग हैं। तो आप आफ्टर ऑल उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जहां ये लोग रहते हों, और ये कुछ संयोग ही है या कह लीजिए कि कुछ व्यवस्था ही ऐसी होती है कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, फ्रेंड्स आज भी विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। विकास की दृष्टि से जब मैं कह रहा हूं तो हर तरीके से, वहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां दूसरे तरह के आर्थिक डेवलपमेंट नहीं है, आर्थिक विकास वहां नहीं हुआ है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा उन तक पहुंची नहीं है। यूं कह लीजिए कि वो जो समाज की जो एक मुख्य धारा होती है उस मुख्य धारा में उस तरह से शामिल नहीं है। अब क्या किया जाए? चूंकि ये मुख्य धारा में शामिल नहीं है तो इनके बीच में जाकर के ये लोग काम करते हैं, और इन लोगों के लिए मतलब ये जो नक्सलवादी हैं उनको बहकाना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप देखिए दो तरीके उनके साथ अपनाते हैं, एक तो उनको बहकाते हैं, मतलब कह लीजिए ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये देखो सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वो तुमसे वोट लेकर के तुम पर राज्य करती कर रही है, तुम्हारी कमाई से दूसरे लोग मौज उड़ा रहे हैं, तो उनको सही लगने लगता है कि देखो तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम्हारी जो जमीन है वो सरकार ने ले ली, तुम्हारे जो जंगल हैं उन पर उन्होंने अधिकार कर लिया। देखिए हमारी जो वन्य जातियां थी प्राचीन काल से, उनकी जो मूल संपत्ति थी वो वन थे, और अंग्रेजों ने आने के बाद वन को राज्य का हिस्सा बना लिया। देखिए हमारे यहां जब तक राजा महाराजाओं का शासन रहा, सामंतवादी व्यवस्था रही, उन्होंने वनों पर उन्हीं का अधिकार रहने दिया, वनों को नहीं छेड़ा उन्होंने, जमीन पर उनका अधिकार था। अंग्रेजों ने आने के बाद वनों को भी अपने हाथ में ले लिया, आप वनों के उपज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन की जो जमीन है वो राज्य की जमीन है, उस पर आपको लगान देना पड़ेगा, यहां तक कि जो खाली जमीन पड़ी हुई चारागाह की वहां भी आप नहीं जा सकते। तो इससे अब ये जो वन्य जातियां हैं, जो वनवासी हैं कह लीजिए, इनका तो जीवन दूभर हो गया। तो ये इनको बड़े आराम से कन्विंस कर लेते हैं कि राज्य तुम्हारे खिलाफ है। दूसरा इनका जो तरीका होता है वो होता है हिंसा का, डराने का, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, तुम्हें कैद कर लेंगे, और ये करते भी है। जहां भी देखते हैं कि कुछ गांव वाले इनके विरोध में उठकर खड़े हो रहे हैं वहीं ये हिंसात्मक गतिविधियां तेजी के साथ शुरू कर देते हैं। अब वो गांव वाले डर जाते हैं और ये गांव के बीच में ही रह करके काम करते हैं, गांव वालों के बीच में रह करके, और धीरे 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 ये खुद में गांव वालों को शामिल करते चले जाते हैं। खासकर चूंकि युवा वर्ग के पास कोई रोजगार नहीं होता, आर्थिक साधन नहीं होते, तो वे बड़े आराम से जो युवा वर्ग है इन नक्सलियों के बहकावे में आ करके और इनकी कह लीजिए तथाकथित सेना में शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से इनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। देखिए जैसे कि मैंने कहा 1967 में ये आंदोलन शुरू हुआ। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद फिर इस आंदोलन में तेजी आती चली गई और ये उन क्षेत्रों में फैलता चला गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र थे। तो आप देखेंगे नक्शे में कि जो नक्सली आंदोलन है या जब आप न्यूज में सुनते हैं तो वे कौन कौन से राज्य होते हैं। अभी तो आपको सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य क्षेत्र है, हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र में और भी स्टेट आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो घटना हो रही है वो कहां हो रही है, छत्तीसगढ़ एरिया में। और उससे लगे हुए ही आपको दूसरे राज्यों की सीमाएं मिल जाएंगे, जिसमें उड़ीसा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, जिसमें आपको झारखंड और बिहार मिल जाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का मिलेगा भले ही वो इससे सटा हुआ नहीं है। तो ये जो स्टेट हैं ये पूरे के पूरे स्टेट नक्सलवाद से प्रभावित हैं और उन्होंने एक पूरा का पूरा एक रास्ता सा बना लिया है। जो वन का जो क्षेत्र है, जो बीहड़ क्षेत्र है कह लीजिए, वो इनके लिए सबसे आदर्शतम जगह होती है और वहां वे लगातार अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं और ये फिर बकायदे पैरेलल सरकार चलाते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, क्योंकि इनको अब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए। तो पैसा कहां से लाएंगे? तो वहां जो लोग डेवलपमेंट का काम, कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, पहले तो ये बनने ही नहीं देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर यहां विकास हो गया, स्कूल खुल गए, अस्पताल खुल गए, तो फिर ये गांव वाले तो उनकी बात मानेंगे नहीं नक्सलियों को, उनको तो लगेगा कि हमारे लिए तो बड़ा अच्छा काम हो गया, इनकी शिक्षित हो जाएंगे तो उनके खिलाफ खड़े होने लगेंगे, नक्सलियों के खिलाफ, तो होने ही नहीं देते। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो उनसे पैसा वसूल करते हैं, वहां जो व्यापारी हैं उनसे पैसा वसूल करते हैं, जो थोड़े से बड़े किसान हैं उनसे पैसा वसूल करते हैं, जो जंगलों के ठेके लेते हैं उनसे वसूल करते हैं, यहां तक कि सरकारी लोगों से भी पैसा वसूल करते हैं। और इनके जो शत्रु होते हैं वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, और सबसे बड़ा इनका जो शत्रु है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक सैनिक बल के लोग, ये सबसे बड़े इनके शत्रु होते हैं। तो आप देखेंगे कि लगातार मुठभेड़ होती रहती है और दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। तो मित्रों ये इनकी इनका वर्किंग पैटर्न है, ये इनकी अर्थव्यवस्था है, समानांतर सरकार चलाते रहते हैं। चूंकि गांव के लोग डरे हुए होते हैं तो इनकी बात को बहुत ज्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकते, यहां तक कि जब वहां चुनाव भी होते हैं तो वो नक्सलियों के आदेश के अनुसार ही चुनाव में भाग लेते हैं। भाग लेना है, नहीं लेना है, लेना है तो किसको वोट देना है, मतलब एक तरीके से जबरदस्त किस्म का कब्जा, अवैधानिक मनोवैज्ञानिक कब्जा जो भय पर आधारित है उन क्षेत्रों में जमा कर रखते हैं। सरकार के सामने एक जो लिमिटेशन आ जाती है मित्रों, वो चलिए क्षेत्र की तो है ही है कि वो बीहड़ क्षेत्र है, लेकिन अब उसके बारे में डेवलपमेंट की बहुत तेजी से किया जा रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, पुलिस बल को नए मतलब आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन सरकार के सामने जो एक लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि वहां वो सेना नहीं भेज सकती, क्योंकि देखिए हैं ये देश के ही लोग और ये कोई देश से अलग नहीं होना चाह रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, बस भटक गए हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, तो बहुत हार्श स्टेप भी नहीं उठा पाती। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे ही देश का जो एक थोड़ा सा एक बौद्धिक वर्ग है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो खासकर मार्क्सवादी विचारों के हैं और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो इनका फेवर भी करते हैं, सैद्धांतिक रूप से इनके पक्ष में भी होते हैं। तो इसलिए सरकार जब इनके खिलाफ कोई बहुत कठोर कदम उठाती भी है तो फिर एक प्रकार से जो एक्टिविस्ट है वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, फिर मानव अधिकार का मामला और दूसरे इस तरह के इश्यूज उठने लगते हैं, तो फिर उससे जो उनके खिलाफ जो एक कार्रवाई होनी चाहिए वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है। और पिछले इतने सालों से मित्रों लगभग यही स्थितियां चलती चली आ रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये जरूर है कि नक्सलवादी आंदोलन पर नक्सलवादी गतिविधि कहना चाहिए, नक्सलवादी गतिविधियों पर थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे नियंत्रण होता जा रहा है। और उसका कारण है कि अब जो राज्य सरकारें हैं अब मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं, उन क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, पुलिस को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। तो धीरे 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 अब उम्मीद है कि गतिविधियां और कम होती चली जाएंगी। तो मित्रों ये नक्सलवाद के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की हैं और अब मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।